इतत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश इतत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, मैं हूं आपका पहला मेजबान।
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान।
और आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो वाकई सोच बदलने वाली है।
हाँ बिल्कुल, किताब का नाम है द ताओ ऑफ फिजिक्स।
और इसका जो मूल विचार है वो थोड़ा कह सकते हैं चौंकाने वाला है
ना, कि भाई आधुनिक विज्ञान, खासतौर पर फिजिक्स की जो नई खोजें हैं,
और दूसरी तरफ हजारों साल पुरानी पूर्वी देशों की जो रहस्यवादी सोच है,
मिस्टिसिज्म जिसे कहते हैं,
उनमें गहरी समानताएं हैं।
बिल्कुल यही बात।
आज के दुनिया में तो ये बड़ी अजीब बात लगती है, क्योंकि विज्ञान और आध्यात्मिकता को अक्सर दो अलग अलग खांचों में देखा जाता है।
हाँ बिल्कुल, विपरीत मानते हैं कई लोग तो।
तो ये किताब एक बड़ा सवाल उठाती है, क्या ये दोनों रास्ते, एक जो लैब से निकलता है, दूसरा जो ध्यान से, क्या ये आखिरकार एक ही मंजिल की तरफ इशारा कर रहे हैं?
क्या वास्तविकता, मतलब रियलिटी, वैसी है जैसी हमें ऊपर से दिखती है, या कुछ और?
गहरा सवाल है।
और यही सवाल आज की हमारी चर्चा का, कह सकते हैं, केंद्र है। क्या ये सिर्फ ऊपर ऊपर की तुलना है,
या इसमें वाकई कोई गहरी सच्चाई है?
चलिए इसी की पड़ताल करते हैं आज।
तो सबसे पहले उस शख्स की बात करते हैं जिसने ये पुल बनाने की कोशिश की।
लेखक फ्रिट्ज ऑफ कपरा।
हाँ, वो ऑस्ट्रिया में जन्मे अमेरिकी भौतिकी विज्ञानी है, मतलब एक प्रॉपर ट्रेन्ड फिजिसिस्ट।
थ्योरेटिकल फिजिक्स में पीएचडी की है और हाई एनर्जी फिजिक्स में रिसर्च भी किया है उन्होंने।
और यही बात उन्हें खास बनाती है ना?
हाँ, मतलब ये कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं है जो साइंस पर कुछ बोल रहे हो।
नहीं नहीं, ये एक साइंटिस्ट है जिन्हें ईस्टर्न फिलोसफी में कुछ गहरा दिखा।
उनकी जो वैज्ञानिक पृष्ठभूमि है वो उनके तर्कों को एक वजन देती है, एक क्रेडिबिलिटी।
बिल्कुल, और उनकी ये याका सिर्फ किताबी नहीं थी, एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है उनके साथ जुड़ा हुआ।
अच्छा?
हाँ, 1969 में कहते हैं वो समुंदर किनारे बैठे थे और अचानक उन्हें एक अनुभव हुआ।
कैसा अनुभव?
जैसे सब एटॉमिक कण बन रहे हैं, मिट रहे हैं, नाच रहे हैं, एक कॉस्मिक डांस जैसा।
वाह।
और उन्हें फौरन हिंदू देवता शिव के तांडव नृत्य की याद आई,
जो ब्रह्मांड के बनने और मिटने का प्रतीक है।
हाँ बिल्कुल, तो कहते हैं वही अनुभव इस किताब की असली प्रेरणा बना।
कमाल है, मतलब एक वैज्ञानिक का इतना गहरा व्यक्तिगत अनुभव। ये चीज उन्हें विज्ञान और प्राचीन ज्ञान दोनों की भाषा समझने और हमें समझाने वाला एक बहुत ही अनूठा सेतु बनाती है।
सही कहा।
तो अब आते हैं किताब पर, ये करती क्या है, इसका लक्ष्य काफी बड़ा है, महत्वाकांक्षी है।
हाँ, ये 20वीं सदी की जो फिजिक्स है, खासकर आइंस्टाइन की रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स,
उनके दार्शनिक मतलब क्या हैं, उनको खंगालती है।
और ये दिखाती है कि कैसे इन खोजों ने ब्रह्मांड का वो पुराना मशीनी मॉडल,
जिसमें सब कुछ घड़ी की तरह चलता था,
हाँ, उसे बिल्कुल तोड़कर रख दिया है।
वो पुराना मॉडल मतलब न्यूटन वाला, जहाँ दुनिया बस अलग अलग पुर्जों का जोड़ थी।
हाँ, और इंसान प्रकृति से अलग, मन शरीर से अलग।
हाँ,
वो वाला नजरिया।
कापरा कहते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाती है,
एक ऐसी हकीकत जो ज्यादा ऑर्गेनिक है, ज्यादा जुड़ी हुई है, होलिस्टिक जिसे कहते हैं,
और लगातार बदल रही है, डायनामिक है।
और कमाल की बात यह है कि ये तस्वीर जो विज्ञान दिखा रहा है वो पूर्वी दर्शन की बातों से बहुत ज्यादा मिलती है,
अटोनेसिंग रूप से।
हाँ,
तो किताब हमें एक तरह के सफर पर ले जाती है। पहले वो हमें उस पुराने न्यूटन और डेकार्त वाले मशीनी दुनिया से मिलवाती है, फिर वो हमें फिजिक्स के जो दो बड़े क्रांतिकारी मोड़ आए, रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी, उनकी गहराई में ले जाती है,
और फिर वो पूर्वी दर्शनों के समंदर में उतरती है, हिंदू धर्म की बातें जैसे ब्रह्म, माया, शिव का नृत्य,
और बौद्ध धर्म की अस्थिरता, अन्योन्याश्रयता, शून्यता,
और ताओवाद का ताओ, यिन यांग, इनके मूल विचारों को सामने रखती है।
और आखिर में सबसे रोमांचक हिस्सा,
हाँ, जहाँ वो इन दोनों विज्ञान और रहस्यवाद के धागों को एक साथ बुनती है,
और ये दिखाती है कि कैसे वो शायद एक ही परम सत्य के अलग अलग पहलू हो सकते हैं।
तर्क ये है कि रास्ते अलग हो सकते हैं, भाषाएं अलग हो सकती है, पर शायद मंजिल एक ही है।
चलिए इन धागों को थोड़ा और खोलते हैं, थोड़ा और समझते हैं। किताब मोटे तौर पर तीन हिस्सों में है।
हाँ, पहला हिस्सा है भौतिकी का मार्ग।
यहाँ कापरा उस पुराने न्यूटन वाले नजरिए से शुरू करते हैं, ब्रह्मांडिक मशीन, सब कुछ पहले से तय,
और डेकार्त का वो मन और पदार्थ का बंटवारा, डुअलिज्म।
कापरा यहाँ ये भी इशारा करते हैं कि कैसे अलग अलग देखने की सोच शायद आज की कई समस्याओं की जड़ में हो सकती है।
टाइम की रिलेटिविटी,
ये स्पेस और टाइम को अलग अलग नहीं देखती,
नहीं, बल्कि एक साथ जोड़कर स्पेस टाइम की तरह देखती है, एक फोर डायमेंशनल चीज।
और उनका वो मशहूर फॉर्मूला E=mc2।
अरे हाँ, वो तो शायद विज्ञान का सबसे प्रसिद्ध समीकरण है।
पर ये सिर्फ एक समीकरण नहीं है, ये बताता है कि पदार्थ यानी मास
और ऊर्जा यानी एनर्जी
वो असल में एक ही चीज के दो रूप हैं, इंटरचेंजेबल।
मतलब ब्रह्मांड ठोस चीजों का कोई गोदाम नहीं है,
बल्कि ऊर्जा का एक लगातार बदलता हुआ डायनामिक रूप है।
वाह।
और फिर आता है क्वांटम सिद्धांत, ये तो कापरा के तर्क का कह सकते हैं दिल है।
हाँ, यहाँ चीजें और भी ज्यादा अजीब और दिलचस्प हो जाती हैं।
पहली बात, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी।
सोचिए, एक इलेक्ट्रॉन जैसी छोटी चीज, वो कभी एक नन्नी गेंद यानी पार्टिकल की तरह बर्ताव करती है,
और कभी एक लहर यानी वेव की तरह,
है ना? अजीब। मतलब दुनिया की जो एकदम बुनियाद है, वो ही पक्की ठोस चीजों से नहीं बनी है।
ऐसा लगता है मानो कोई चीज एक ही समय पर ठोस भी हो सकती है और फैली हुई भी, ये समझना ही मुश्किल है।
बिल्कुल। दूसरी बड़ी चीज, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
इसे कैसे समझें आम भाषा में?
इसे ऐसे समझें जैसे आप अंधेरे में एक बहुत तेज घूमते हुए पंखे के पर की पोजीशन जानने की कोशिश कर रहे हों।
ठीक है।
जिस पल आप ठीक ठीक जानेंगे कि पर कहाँ है, उसी पल आप ये अंदाजा खो देंगे कि वो कितनी तेज घूम रहा है, यानी उसका मोमेंटम क्या है।
अच्छा।
क्वांटम लेवल पर किसी चीज की पक्की जगह पोजिशन और पक्की रफ्तार मोमेंटम एक साथ एक ही समय पर जानना नामुमकिन है।
तो मतलब एक फंडामेंटल अनिश्चितता है।
हाँ, विज्ञान के केंद्र में ही एक अनिश्चितता, एक संभावना यानी प्रोबेबिलिटी आ जाती है, सब कुछ तयशुदा नहीं है।
और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, वो है देखने वाले यानी ऑब्जर्वर की भूमिका।
हाँ, क्वांटम फिजिक्स कहती है कि आप किसी चीज को कैसे देखते हैं या उसे नापते हैं, ये बात उस चीज के बर्ताव को बदल देती है।
क्या मतलब?
मतलब ऐसा लगता है मानो हमारा देखना, शायद हमारी चेतना भी इस पूरे खेल का हिस्सा है।
हम सिर्फ बाहर से देखने वाले दर्शक नहीं है।
नहीं, हम भागीदार हैं, पार्टिसिपेंट हैं।
ये तो बहुत बड़ी बात है।
और फिर है क्वांटम एंटेंगलमेंट, उलझाव।
ये तो मुझे हमेशा किसी जादू जैसा लगता है।
है ही कुछ वैसा। दो कण जो कभी एक साथ थे, अगर उन्हें अलग करके मीलों दूर भी ले जाया जाए,
हाँ,
तो भी वो रहस्यमयी ढंग से जुड़े रहते हैं। एक पर कुछ करो तो उसका असर तुरंत दूसरे पर दिखता है।
तुरंत मतलब लाइट की स्पीड से भी तेज।
हाँ, आइंस्टीन को भी ये बहुत अजीब लगता था, इसे उन्होंने स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था।
ये क्या इशारा करता है?
ये इशारा करता है कि ब्रह्मांड में चीजें गहराई से, किसी अनदेखे धागे से, नॉन लोकली जुड़ी हुई हैं।
तो इस पहले हिस्से, भौतिकी के मार्ग का निचोड़ क्या निकलता है?
निचोड़ ये है कि ये दुनिया अपनी बुनियाद में एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर ठोस चीजों से नहीं बनी है,
बल्कि
रिश्तों के जाल, ऊर्जा के पैटर्न्स और संभावनाओं से बनी है।
ये लगातार बदलती नाचती हुई ऊर्जा की दुनिया है।
हाँ, जहाँ सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, एक अविभाज्य पूरी चीज की तरह।
ये सोचना ही कितना अलग है हमारे रोजमर्रा के अनुभव से।
बिल्कुल।
तो ये तो थी विज्ञान की हैरान करने वाली खोज, जो बताती है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं बल्कि रिश्तों का एक गतिशील जाल है। अब दिलचस्प बात यह है कि हजारों साल पहले पूरब के जो मनीषी थे, संत थे,
उन्होंने बिना किसी लैब के, बिना किसी गणित के,
हाँ, सिर्फ ध्यान और चिंतन से
कुछ मिलती जुलती बातें कही थी।
बिल्कुल। तो अब जरा उस दुनिया में चल के देखें। किताब का दूसरा भाग है पूर्वी रहस्यवाद का मार्ग। हाँ, यहाँ कापरा हमें कुछ मुख्य पूर्वी दर्शनों के कोर आइडिया से मिलवाते हैं,
जैसे हिंदू धर्म में ब्रह्म का विचार,
यानी वो परम एकता, वो एक चेतना जो हर चीज के पीछे है, हर चीज में है।
हाँ, द अल्टीमेट रियलिटी। फिर माया का कॉन्सेप्ट कि ये जो हमें दुनिया अलग अलग दिखती है, ये शायद एक भ्रम है, एक इल्यूजन।
और आत्मा यानी हमारी व्यक्तिगत चेतना और ब्रह्म यानी वो परम चेतना का एक होना, अहम ब्रह्मास्मि।
और शिव का नृत्य, वो कॉस्मिक डांस जो ब्रह्मांड के लगातार बनने और मिटने का प्रतीक है, एक शाश्वत चक्र,
क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन का साइकिल।
हाँ, फिर बौद्ध धर्म की बात आती है,
उसकी एक मुख्य शिक्षा है अस्थिरता, इम्पर्मनेंस।
मतलब सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, न बाहर न अंदर।
दूसरी बड़ी बात है अन्योन्याश्रयता या प्रतीत्य समुत्पाद, इंटरडिपेंडेंस।
इसका मतलब है कि कोई भी चीज अपने आप में अकेली मौजूद नहीं है, सब कुछ दूसरी चीजों पर निर्भर है।
जैसे एक मकड़ी का जाल, हर धागा दूसरे से जुड़ा है।
इनहेरेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, वो संबंधों में ही अर्थ पाती हैं, संबंधों से ही बनती हैं, एम्प्टीनेस ऑफ इनहेरेंट एग्जिस्टेंस।
ओके, ये थोड़ा गहरा है।
और फिर ताओवाद, इसका मूल है ताओ,
जिसे द वे या रास्ता या परम ब्रह्मांडीय प्रक्रिया कह सकते हैं।
हाँ, और ये येन और यांग के जरिए जाहिर होता है।
वो विपरीत लगने वाले सिद्धांत, जैसे अंधेरा और रोशनी, स्त्री पुरुष, ठंडा गरम।
हाँ, पर ताओवाद कहता है ये विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, एक डायनामिक बैलेंस में रहते हैं।
और वू वेई का सिद्धांत,
उसका मतलब है बिना जोर लगाए सहज रूप से काम करना, एफर्टलेस एक्शन, जैसे नदी बिना जोर लगाए समुद्र तक पहुंच जाती है।
वाह, ये विचार अपने आप में ही कितने गहरे और सुंदर हैं। अब आता है किताब का सबसे रोमांचक मोड़, तीसरा भाग, समानताएं।
हाँ, जहां कापरा इन दोनों दुनियाओं, आधुनिक भौतिकी और पूर्वी रहस्यवाद को आमने सामने लाते हैं, और जो समानताएं हैं वो वाकई चौंकाने वाली हैं।
पहली और शायद सबसे बड़ी समानता क्या है?
सभी चीजों की एकता।
द यूनिटी ऑफ ऑल थिंग्स।
हमने क्वांटम एंटेंगलमेंट में देखा कैसे कण मीलों दूर होकर भी जुड़े रहते हैं।
हाँ, और हिंदू धर्म में ब्रह्म का विचार है कि सब कुछ अंततः एक ही है,
या बौद्ध धर्म की अन्योन्याश्रयता कि सब कुछ जुड़ा हुआ है।
तो ये कितनी मिलती जुलती बात है। विज्ञान अपनी प्रयोगशाला में जो देख रहा है,
वही बात संत हजारों साल से ध्यान में अनुभव कर रहे थे
कि अलगाव शायद सिर्फ एक भ्रम है, हम सब असल में एक हैं, एक अदृश्य धागे से जुड़े हैं।
बिल्कुल। दूसरी समानता, विपरीताओं से परे जाना, बियॉन्ड ऑपोजिट्स।
जैसे फिजिक्स में वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी है, एक ही चीज कण भी है और लहर भी।
ये ताओवाद के यिन यांग जैसा है, जहां विपरीत चीजें असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे को पूरा करती हैं।
ये हमारी या तो ये या वो वाली जो बाइनरी सोच है उसको चुनौती देता है।
हाँ, तीसरी, स्थान समय।
आइंस्टीन ने दिखाया,
हाँ,
कि स्पेस और टाइम अलग नहीं, जुड़े हुए हैं, 4D स्पेस टाइम।
ये कुछ वैसा ही है जैसा कई रहस्यवादी मिस्टिक्स कहते हैं कि गहरे ध्यान में समय का बंधन टूट जाता है,
उन्हें भूत, वर्तमान, भविष्य एक साथ महसूस होते हैं, टाइमलेसनेस का अनुभव।
हाँ, ट्रांसेंडिंग टाइम। चौथी, गतिशील ब्रह्मांड, द डायनामिक यूनिवर्स।
क्वांटम फिजिक्स दिखाती है,
हाँ,
कि कण स्थिर नहीं है, वो ऊर्जा के नाचते हुए पैटर्न है, लगातार बन रहे हैं, मिट रहे हैं।
ये सीधे सीधे शिव के ब्रह्मांडीय नृत्य से जुड़ता है, वो कॉस्मिक डांस
है ना। और पांचवी, शून्यता और रूप, एम्प्टीनेस एंड फॉर्म।
क्वांटम फिजिक्स में वैक्यूम का मतलब खाली जगह नहीं है,
नहीं,
वो संभावनाओं से भरी जगह है, पोटेंशियलिटी से भरा हुआ, जहां से कण अचानक पैदा हो सकते हैं और गायब हो सकते हैं।
और ये बहुत शून्यता जैसा है।
हाँ, जहां शून्यता का मतलब है संभावनाओं का अनंत स्रोत, जिससे सारे रूप निकलते हैं, जैसा हार्ट सूत्र में कहा गया है, रूप ही शून्यता है, शून्यता ही रूप है।
फॉर्म इज एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस इज फॉर्म।
यानी जो हमें ठोस दिखता है वो भी मूल रूप में संभावना ही है, और संभावना ही रूप लेती है।
बिल्कुल, ये समानताएं तो कमाल की हैं।
और किताब के अंत में कापरा एक नए नजरिए, एक नए पैराडाइम की जरूरत पर जोर देते हैं।
हाँ, एक ऐसा विश्व दृष्टिकोण जो इकोलॉजिकल हो, समग्र हो और आध्यात्मिक भी हो, जो विज्ञान और ज्ञान की इन दोनों धाराओं को साथ लेकर चले।
तो इस पूरी इतनी गहरी चर्चा को अगर समेटें तो कुछ मुख्य बातें, मुख्य संदेश क्या उभरते हैं?
मेरे ख्याल से पहली बात तो यही है कि वो पुराना मशीनी नजरिया, दुनिया को बस पुर्जों के जोड़ की तरह देखना, वो अब नाकाफी है, वैज्ञानिक तौर पर भी आउटडेटेड है और शायद हमारे जीने के तरीकों के लिए भी हानिकारक है, ये अलगाव पैदा करता है।
दूसरी और शायद सबसे जरूरी, कि हर चीज फंडामेंटली एक है और एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इंटरकनेक्टेडनेस एंड यूनिटी।
ये जो हमें अलग अलग चीजें दिखती हैं, ये शायद सतह पर है, गहराई में सब जुड़ा हुआ है।
चाहे वो क्वांटम फिजिक्स का एंटेंगलमेंट हो, या वेदांत का अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि।
तीसरी बात, ये हकीकत, ये रियलिटी कोई ठहरी हुई स्टैटिक चीज नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक प्रवाह है, एक डांस है, डायनामिक रियलिटी।
कण नाच रहे हैं, ऊर्जा बह रही है, ब्रह्मांड बदल रहा है।
जैसे बौद्ध कहते हैं, सब अनित्य है, अनिच्या, या ताओ प्रवाह की बात करता है, या शिव का नृत्य।
इसे समझना शायद हमें जीवन में बदलाव को स्वीकार करने में मदद कर सकता है।
हाँ, चौथी थीम है विपरीत चीजों का पूरक होना, कॉम्प्लीमेंटैरिटी ऑफ ऑपोजिट्स।
हमें वो ये अच्छा वो बुरा या तर्क बना भावना वाली जो विभाजनकारी सोच है उससे आगे बढ़ना होगा।
लहर और कर्ण, यिन और यांग, ये दिखाते हैं कि जीवन विरोधाभासों से भरा है और शायद यही उसकी खूबसूरती है। संतुलन जरूरी है।
और पांचवी बात
वो ये कि हमारी भाषा और हमारा तर्क चाहे कितने भी विकसित क्यों न हो, वो परम सत्य को, अल्टीमेट रियलिटी को पूरी तरह पकड़ नहीं सकते।
लिमिट्स ऑफ लैंग्वेज एंड लॉजिक।
फिजिसिस्ट गणित और प्रयोगों का सहारा लेते हैं जो आम भाषा से परे हैं।
और रहस्यवादी ध्यान, मौन और रूपकों, मेटाफोर्स।
शायद अनुभव, सीधा अनुभव शब्दों से ज्यादा मायने रखता है।
डायरेक्ट एक्सपीरियंस।
हाँ, और अगर इसे भारत की रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें,
हाँ ये जरूरी है,
तो हम लगातार बदलाव देखते हैं। मौसम बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। ये अस्थिरता का सीधा अनुभव है।
और एकता की बात तो हमारे कितने ही दर्शन करते हैं, भले ही समाज में हमें कितना भी बंटवारा क्यों ना दिखे।
ये किताब उन गहरे भारतीय विचारों को एक तरह से नया वैज्ञानिक संदर्भ देती है।
सही कहा। अच्छा, इस किताब में कई ऐसी पंक्तियां या विचार हैं जो दिमाग में गूंजते रहते हैं।
हाँ बिल्कुल, कुछ पर बात करते हैं।
जरूर। पहला तो वही शिव के नृत्य वाला रूपक। कापरा कहते हैं, शिव का नृत्य नाचता हुआ ब्रह्मांड है, ऊर्जा का निरंतर प्रवाह। आधुनिक भौतिकी ने दिखाया है कि सभी कण सृजन और विनाश के निरंतर ब्रह्मांडीय नृत्य में है।
ये सिर्फ एक सुंदर उपमा नहीं है, ये विज्ञान की एक गहरी खोज को एक प्राचीन शक्तिशाली सांस्कृतिक प्रतीक से जोड़ता है। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग रास्ते एक ही सच्चाई तक पहुंच सकते हैं।
दूसरा विचार क्वांटम रियलिटी का सार बताता है। कापरा लिखते हैं, क्वांटम सिद्धांत ने मौलिक रूप से अलग वस्तुओं की धारणा को समाप्त कर दिया है। पर्यवेक्षक के स्थान पर प्रतिभागी की अवधारणा पेश की है। ब्रह्मांड को संबंधों के एक जुड़े हुए जाल के रूप में देखना आवश्यक पाया है।
ये कितना बड़ा शिफ्ट है। हम दुनिया से अलग होकर उसे देखने वाले ऑब्जर्वर नहीं है,
हम उसी दुनिया का हिस्सा हैं और हमारे देखने से, हमारे मापने से ही दुनिया वैसी बनती है जैसी वो दिखती है। हम प्रतिभागी हैं
और हम चीजों से नहीं रिश्तों से बने हैं। ये सोच ही बदल देता है।
तीसरा, ज्ञान के अलग अलग रास्तों पर। कापरा का मानना है, भौतिक विज्ञानी और रहस्यवादी अलग अलग जांच पद्धतियों का विकास करते हैं, लेकिन वे दोनों वास्तविकता की एक ही आवश्यक प्रकृति की जांच कर रहे हैं।
ये बात तर्क, रैशनल माइंड और अंतर्ज्ञान, इंट्यूटिव माइंड की पूरकता को दिखाती है। दोनों जरूरी हैं।
दोनों हमें रोजमर्रा की सतही सोच से परे ले जाते हैं। वो दुश्मन नहीं बल्कि एक ही खोज के साथी हैं।
बिल्कुल। और चौथा, आत्मचिंतन पर। क्वांटम फिजिक्स से ये बात निकल कर आती है, परमाणु भौतिकी में हम कभी भी प्रकृति के बारे में बात नहीं कर सकते बिना उसी समय अपने बारे में बात किए।
इसका क्या मतलब हुआ?
मतलब जब हम दुनिया की सबसे छोटी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम असल में खुद को भी समझ रहे होते हैं। देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं है, कॉन्शियसनेस इज इन्वॉल्व्ड।
ये चेतना की भूमिका पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है।
हाँ, ये बातें सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये हमारे अपने अस्तित्व के एहसास को, हमारे होने के अनुभव को बदल सकती हैं।
तो फिर ये सवाल उठता है, क्या ये सब बातें सिर्फ किताबों या लैब तक ही सीमित हैं, या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी इनका कोई असर पड़ सकता है?
मुझे तो लगता है बिल्कुल पड़ सकता है। ये सिर्फ अमूर्त दर्शन नहीं है।
कैसे?
जरा सोचिए, अगर हम सच में ये महसूस करें कि हम सब उस बड़े ब्रह्मांडीय जाल का, उस कॉस्मिक वेब का हिस्सा हैं, तो शायद अकेलापन, चिंता, डर कुछ कम हो सकता है।
कनेक्टेडनेस की भावना।
और अगर हम समझें कि बदलाव ही जीवन का नियम है, बुद्ध अस्थिरता, तो शायद हम मुश्किलों का सामना, चीजों के बदलने को ज्यादा शांति से स्वीकार कर पाए, लेट गो करना आसान हो।
हाँ, मोह कम हो सकता है। और अपने फैसले लेते वक्त
सिर्फ लॉजिक या दिमाग की ना सुने, बल्कि अपने इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग, दिल की आवाज को भी जगा दें।
राइट।
एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाएं।
और सामाजिक स्तर पर इसका क्या असर हो सकता है?
सिस्टम थिंकिंग।
हाँ।
ये बहुत जरूरी है। मतलब किसी समस्या को टुकड़ों में नहीं बल्कि पूरी तस्वीर में देखना,
उसके सारे आपसी कनेक्शन समझना।
कोई उदाहरण?
हाँ।
जैसे मान लीजिए किसी समुदाय में पानी की कमी है, तो सिस्टम सोच वाला व्यक्ति सिर्फ नया नल लगाने के बारे में नहीं सोचेगा।
वो क्या देखेगा?
वो देखेगा बारिश का पैटर्न क्या है, पुराने तालाब क्यों सूख गए, लोग पानी कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहीं बर्बादी तो नहीं, आसपास की फैक्ट्रियों का क्या रोल है, जंगल कटने का क्या असर हुआ है। मतलब पूरी प्रणाली को समझना, सिर्फ एक लक्षण को नहीं।
ये तो समस्याओं को हल करने का ज्यादा असरदार तरीका लगता है।
बिल्कुल, यही सोच बिजनेस में भी लग सकती है। सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि समाज और पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है वो भी देखना,
सस्टेनेबिलिटी की तरफ।
हाँ, स्वास्थ्य में भी मन शरीर आत्मा सब जुड़े हैं, होलिस्टिक हेल्थ।
और पर्यावरण के लिए तो ये सोच क्रांति ला सकती है।
बिल्कुल, हम प्रकृति से अलग या उसके मालिक नहीं है, हम उसका हिस्सा हैं, उसकी देखभाल हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना।
और वैश्विक स्तर पर
ये हम बनाम वो वाली जो सोच है जो इतने झगड़ों की जड़ है,
हाँ।
शायद उसे तोड़ने में मदद मिले। अगर सब जुड़े हैं तो दूसरों का दुख कहीं ना कहीं हमारा दुख है, उनकी खुशी हमारी खुशी, सहानुभूति, करुणा, वैश्विक सहयोग को बढ़ावा मिल सकता है।
तो ये नजरिया वाकई दुनिया को देखने का, उसमें जीने का ढंग बदल सकता है, सिर्फ थ्योरी नहीं है।
ने खड़ी कर दी है वो कितनी बनावटी है, कितनी आर्टिफिशियल है। दोनों ही इंसान की सत्य को जानने की गहरी प्यास से निकले हैं, अलग अलग औजारों का इस्तेमाल करते हैं पर खोज शायद एक ही है।
और ये एहसास कि ब्रह्मांड कोई मरी हुई मशीन नहीं,
हाँ, बल्कि एक जिंदा धड़कता हुआ नाचता हुआ वजूद है, ये भी बहुत शक्तिशाली लगता है मुझे।
और मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे विज्ञान अपनी सबसे एडवांस खोजों के जरिए घूम फिरकर उन अंतर्दृष्टियों की तरफ लौटता दिख रहा है जो हजारों साल पुरानी है।
हाँ, ये साइकिल जैसा है।
और ये याद दिलाना कि तर्क अपनी जगह बहुत जरूरी है, पर अंतर्ज्ञान और अनुभव के बिना ज्ञान अधूरा है। इन दोनों को साथ लाना, इंटीग्रेट करना शायद आज की सबसे बड़ी जरूरत है।
सही कहा। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इन स्रोतों से ही उठता है पर जिस पर हमने खुलकर बात नहीं की।
जरूर।
क्वांटम भौतिकी और पूर्वी दर्शन दोनों कहीं ना कहीं चेतना को बहुत अहमियत देते नजर आते हैं, ऑब्जर्वर का रोल, ध्यान का अनुभव। तो क्या ऐसा हो सकता है कि चेतना सिर्फ हमारे दिमाग की उपज न होकर ब्रह्मांड की बुनावट का ही एक मौलिक फंडामेंटल हिस्सा हो जिसे हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं?
वाह, सोचने के लिए एक बहुत बड़ा कैनवस है ये।
बिल्कुल।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।